प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजम् अव्ययम् रहस्यात् रहस्यात् अन्तिम अध्याय का संचार रहस्यात् रहस्यात् सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यात् रहस्यात् अन्तिम अध्याय का संचार रहस्यात् रहस्यात् सुनो परमात्मा की पुकार
रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान
निःशब्द आकाश में गीत एक अनजान
रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान
निःशब्द आकाश में गीत एक अनजान
अज्ञान के गर्भ से उठे अंशुझा स्वर
अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्जल
मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली
एक संकेत गूंज रहा
अब है अंधेर घड़ी
रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार
ओम शांति। एक व्यक्ति अपने स्कूल में जहां वो शिक्षक है जा रहा होता है तो रास्ते में धूल उड़ती है और उसके कपड़े खराब होते हैं और फिर एक गाड़ी गुजरती है और गाड़ी का धुआं उसके मुंह पर आता है और थोड़ा और आगे जाता है तब एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से अपनी बाइक चलाते हुए जो सड़क पर पानी जमा है उड़ाते हुए निकल जाता है और ये व्यक्ति बहुत परेशान होता है चिल्लाता है सरकार को दोषी ठहराता है। वहां खड़े एक हवलदार से भी शिकायत करता है कि क्या हो रहा है सरकार कुछ करती क्यों नहीं। उसको अपने कपड़ों से दुर्गंध आने लगती है उसके कपड़े मैले हो गए कीचड़ से और आज तो विशेष दिन है स्कूल में फोटो सेशन होने वाला है और समय हो चुका है। वो सोचता है अब क्या करूं फिर भी कोसते हुए दुखी मन से शर्म से वो स्कूल में पहुंचता है और देखता है बाकी सभी शिक्षक बहुत अच्छे अच्छे चमकदार लिबास पहनकर खड़े हैं। उसे शर्म आती है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हैं दुर्गंध आ रही है कीचड़ से सने हैं। वो अपने आप को छिपाते हुए अंदर घुसता है और वो चपरासी कहता है, प्रिंसिपल बुला रहे हैं पीछे मैदान में, और वो वहां जाता है। वो प्रिंसिपल वहां खड़े हैं और जब ये व्यक्ति उनको देखता है तो उसे और ज्यादा शर्म आती है, कपड़े इतने गंदे हैं। वो प्रिंसिपल कहता है, जल्दी आओ, आज स्कूल की सफाई का जो फोटो है वो सरकार को भेजना है, और तुमने अच्छा किया जो इस तरह के कपड़े पहन कर रहे, बाकी सारे गधे हैं जो यहाँ पर चमकीले वस्त्र पहन कर आए हैं, तो जल्दी आओ, तुम्हारा फोटो निकालना है। और जैसे ही वो ये सुनता है, कपड़ों की दुर्गंध गायब हो जाती है। कैसे कैसे गायब हो गई? अभी तक दुर्गंध आ रही थी कपड़ों से, पर अभी वो दुर्गंध, नदारत लुप्त हो गई। कैसे? क्या मनस्थिति और मनुष्य का मन अत्यंत रहस्यों से भरा है। जीवन लाइफ एक मिस्ट्री जैसा है, एक पहेली जैसा। वो कब क्या सोचता है और कब क्या होता है? अभी अभी जो परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल लग रही थी, अभी वही परिस्थिति अनुकूल लगने लगी है। कपड़े वही है, कीचड़ वही है, दुर्गंध वही है, परंतु अब दुर्गंध नहीं है, क्योंकि उसके विचार, परिस्थिति, मन का मौसम, द क्लाइमेट ऑफ द माइंड बदल चुका है। और यदि हम निरंतर बेहोशी से बाहर रहे, क्योंकि हमारे सारे दुखों का कारण एक बेहोशी है, एक कंडीशनिंग है, एक प्रोग्रामिंग जो हमने बचपन से बनाई है, और उसी बेहोशी में हम चलते हैं। जागरण का एक पल अगर आ जाए, केवल एक पल, तो उस एक पल के जागरण में वो दिखाई देगा जो हजारों शब्द, किताबें, क्लासेस, भट्टियां कुछ भी नहीं दिखा सकी। और व्यक्ति जागृत कब होता है? जब खतरा होता है, डेंजर होता है। जितना ज्यादा खतरा उतना ज्यादा जागरण। एक सूक्ष्म रहस्य है इन सब के पीछे, ये समझना, ये शरीर कैसे काम करता है, ये मन कैसे काम करता है, ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये जीवन कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन है, क्या है। ये युग डेटा का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है, चारों तरफ बाढ़ आई है ज्ञान की, परंतु वो केवल सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं। इन रहस्यों को समझना है। रहस्य के पीछे छिपा हुआ रहस्य, द सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट, द डेप्थ बिहाइंड द डेप्थ, जो रहस्य है उसके भी पीछे और एक रहस्य है। बहुत समय पहले योग कर रहे थे सुबह, तो अचानक सोच रहे थे एक शब्द के विषय में, रहस्य। और बचपन में कभी एक शब्द सुना था, युवांतर, तो एक नया शब्द मन में आया, रहस्यांतर। भाषा में शायद ये शब्द नहीं है, ना ही किसी शब्दकोश में इसका अर्थ, परंतु तब ऐसे समझ में आया कि इसका अर्थ है सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट, जो रहस्य के पीछे रहस्य छिपा है। और तब हम लोगों ने 21 दिन की एक भट्टी चलाई थी रहस्यांतर की, जिसमें बहुत पहले कुछ दूसरे अर्थों में इसका विश्लेषण किया था, पर आज इसका विश्लेषण, इसका अर्थ कुछ और अर्थों में, वर्तमान समय के अनुसार करने का प्रयत्न करेंगे। जीवन मिस्टीरियस है, बहुत सी घटनाएं जो घट रही है वो क्यों घट रही है या क्यों घटी, ये हम समझ नहीं पाते, इसीलिए एक कंफ्यूजन रहता है मन में, है उलझन भरी। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 8 बातें देखेंगे जो हमें लगता है हमें पता है, परंतु उसमें इतनी गहराई है कि हमें पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं पता। जैसे हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा से मिलन की विधि है अव्यक्त स्थिति। किसी व्यक्ति का गधा खो गया, चारों तरफ उसने ढूंढा, कहीं नहीं मिला, सारे गांव वालों ने साथ दिया ढूंढने में, फिर भी नहीं मिला। सबने अलग अलग राय दी, बताया ये करो वो करो, सब कुछ किया, गधा नहीं मिला। फिर किसी ने कहा यहां तीर्थ यात्रियों का एक दल आया था, शायद आपका गधा उन्हीं के साथ तीर्थ यात्रा पे निकल गया होगा। परंतु उस व्यक्ति ने सोचा मुझे एक अंतिम ट्राई करना है, एक अंतिम प्रयत्न, शायद मुझे मेरा गधा मिल जाए। और सब करने के बाद वो खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और दो हाथ और दो पैर से चलने लगा, और चलते हुए सब जगह ढूंढने लगा, और अचानक एक गड्ढे के पास पहुंच गया और उसका गधा उस गड्ढे के अंदर था और उसे उसका गधा मिल गया। लोगों ने पूछा ये युक्ति तुम्हें कैसे आई? उसने कहा जब मनुष्य को ढूंढते हैं तो मनुष्य बनकर ढूंढा जाता है, और यदि गधे को ढूंढना है तो बिना गधे बने कैसे ढूंढ पाएंगे। जिसके जिसे ढूंढना है उसके ही जैसा बनना पड़ेगा। यदि निराकार से मिलन करना है तो निराकार होना होगा। यदि अव्यक्त से मिलन करना है तो अव्यक्त होना होगा। नहीं तो ये मिलन अधूरा अपूर्ण रहेगा। परमात्मा परम मौन है। यदि उससे मिलना है तो मौन होना होगा। इसलिए आप सभी इस भट्टी में आए हैं। लक्ष्य है उस भगवान से मिलन हो जाए। तो जितना हो सके और जब तक यहां है बातचीत को कम कर देना है। अगर बातचीत करनी भी है तो साधना संबंधित, अन्यथा 3 दिनों के लिए पूर्ण मौन, 3 दिनों के लिए पूर्ण एकांत, जैसे कोई है ही नहीं। जीवन की यात्रा में भागते 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 आत्माएं थक जाती है। चारों तरफ से डेटा, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, न्यूज थका देती है। इसलिए अगर हो सके तो 3 दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ, अगर हो सके तो इस कैंपस के बाहर कदम नहीं रखना है। लॉकडाउन, जितना गहरा मौन होगा और जितना गहरा एकांत होगा उतना गहरा अनुभव होगा। नहीं तो यहाँ आना, यहाँ रुकना, सुबह से लेकर शाम तक सुनना, खाना, घूमना, ये सब कनरस की तरह है। थोड़े देर इसका असर चलेगा, वहां जाने के बाद जैसे थे। यदि हम चाहते हैं कि कोई एक गहरा अनुभव हो जाए, जीवन की कोई एक समस्या है, कोई उलझन है, उसका उत्तर मिल जाए, तो अपने ही भीतर प्रवेश करना होगा, अपने ही भीतर डुबकी लगानी होगी। क्योंकि उत्तर किसी क्लास में नहीं है, ना किसी किताब में, ना किसी व्यक्ति के पास। हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारी ही अंतरात्मा में छिपे हैं। इन 3 नियमों के साथ मौन, मोबाइल बंद और तीसरा लॉकडाउन, कैंपस में कैद, तब किसी अज्ञात पल में, क्षण में हो सकता है उस निराकार का अनुभव हो जाए, अपनी ही आत्मा का अनुभव हो जाए, स्वयं का। तो आज का विषय है रहस्यांतर, अर्थात रहस्य के पीछे छिपा हुआ रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, द सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट। इसमें हम 8 बातें लेंगे जिस पर हमें काम करना है, जिन्हें हमें समझना है, और वो सभी बातें आप सब जानते हैं। परंतु गहराई, गहराई की आवश्यकता है। एक है उथला उथला पुरुषार्थ, सुपरफिशियल, एक है गहरा। जिसमें हम अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करते हैं, जिसे हमें जब हमें वो दिखाई देता है जो अब तक नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी एक इमरजेंसी अपने भीतर क्रिएट करनी है कि ये बस 3 दिन है, उसके बाद नहीं, शायद वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, इसलिए मुझे जो कुछ पाना है, जो अनुभव करना है, जो अब तक नहीं किया, जो छिपा है, उसको अब करना है। क्योंकि आप सभी यहाँ आए हैं घर बार से दूर, तो सबसे पहले कुछ समय के लिए उस दुनिया से डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट टू रीकनेक्ट, स्वयं से कनेक्ट करना है। सभी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे जीवन के इस अनंत यात्रा में मैं कहां खड़ा हूं। जस्ट देखो, जीवन की इस अनंत यात्रा में मैं भागते भागते कहां आ चुका हूं, ये कौन सा पड़ाव है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी डगर है, ये कौन से नजारे हैं, क्या मैं वही जा रहा हूं जहां मुझे जाना था। यह मुझे रुकना है, स्टॉप पॉज स्टैच्यू। ओम शांति। तो सबसे पहला रहस्य है आत्मा, सबसे पहला रहस्य है आत्मा। कैसे दर्शन हो, क्या केवल रटने से या दोहराने से या लिखने से, जैसे कहा अत्यंत खतरे की जब अवस्था होती है तब जागरण घटित होता है। क्यों मनुष्यों को हमेशा पहाड़ों पर चढ़ना पसंद आया, क्यों मनुष्यों ने हमेशा खतरों से खेला, क्यों जंग में गए, क्यों समुद्र में कूद पड़े, वहां तो खतरा है, क्यों? एक प्रश्न आता है मन में हमेशा। एक जेन मास्टर था जिसका नाम था बोकोजो। उसके आश्रम के अद्भुत नियम थे, वो मेडिटेशन सिखाता था, परंतु मेडिटेशन सिखाने की उसकी टेक्निक अलग थी। वो जो विद्यार्थी आते थे उनको झाड़ पर चढ़ने के लिए कहता था, ऊंचे ऊंचे झाड़, लंबे लंबे 150 फीट के, वो ही प्रशिक्षण देता था। एक राजकुमार आया और उस राजकुमार को भी वही कहने को कहा, करने को कहा। वो राजकुमार चढ़ने लगा, चढ़ने लगा और एकदम ऊंचाई पर चढ़ा गया। तब तक ये गुरु आराम से बैठ गया झाड़ के नीचे। वो एकदम ऊंचा ऊंचा चढ़ने लगा, चढ़ने लगा, एकदम ऊंचा टोक पे पहुंच गया। ना कोई गाइडेंस, ना कोई कुछ कहने वाला, ना कोई प्रोत्साहन देने वाला, और गुरु आराम से लेट के आराम से सो रहा है नीचे। ये कैसी ट्रेनिंग है? और जब वो नीचे उतरने लगता है और बस 15 फीट पहुंचते हैं, तब गुरु खड़ा हो जाता है, ध्यान से आराम से देखना, संभल के गिर ना जाओ। वो बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है, कहते अजीब गुरु हो तुम, जब मैं ऊपर था तब कुछ नहीं कहा, प्राण कप रहे थे, हवाएं चल रही थी, अब गिरा तब गिरा, नीचे देखने का भी डर लग रहा था, तब तुमने कुछ नहीं कहा, और अब जब नीचे आ गया तब कहते हो ध्यान से संभल के, कैसे गुरु? गुरु कहता है जब तुम ऊपर थे, खतरे में थे, तुम स्वयं ही जगे हुए थे, मुझे जगाने की आवश्यकता नहीं। डेंजर में व्यक्ति जागृत हो जाता, कोई आ जाए आधी रात को और चाकू लेके छाती पर बैठ जाए, तब हम कहेंगे मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। जब बैठे हैं तो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, चलते हैं तो व्यर्थ संकल्प विचार कम हो जाते हैं, और जब दौड़ रहे होते तो और कम हो जाते, पर यदि कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा है तब कौन से व्यर्थ संकल्प चलते हैं? कोई चलते हैं? ऐसी संकट की घड़ी में ही एक सतत एक झलक मिलती है, और गुरु कहता है कि जब तुम ऊपर थे, इतने संकट में थे और इतने डरे हुए थे और इतने कप रहे थे कि स्वतः ही जागरण हो गया था, यदि तुम ऐसी ही जागरण की अवस्था में 24 घंटे रहो तो आत्मा की तुम्हें झलक मिलेगी। इस डेंजर की अवस्था में इसलिए यदि उस आत्मा की झलक पानी है तो उसके दो तल है, एक शरीर का तल और एक चित्त का तल, और साधना अत्यंत साधारण है परंतु अत्यंत प्रभावशाली। शरीर के तल की साधना है, शरीर की प्रत्येक हलचल का ध्यान रखना, हाथ यहां है अगर यहां किया उसका भी होश, एक एक शरीर में जो हो रहा है, बॉडी रिमेम्बरिंग से बॉडी से परे हम चले जाते हैं, इस शरीर को देखते देखते ही शरीर से परे हम निकल जाते हैं, एक एक जो हो रहा है शरीर के तल पर उसकी जागृति। बुद्ध बैठे हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, अचानक एक मच्छर आता है, हाथ अपने आप जाता है, मच्छर भाग जाता है, थोड़ी देर के बाद बुद्ध फिर अपने हाथ ले जाते हैं, अभी मच्छर नहीं है। आनंद पूछता है ऐसा क्या किया, अभी क्या ऐसे क्यों कर रहे आप? वो कहते हैं पहली बार जो मैंने किया वो बेहोशी में किया था, अब होश में कर रहा हूं, चलना है संपूर्ण होश में, शरीर की एक एक हलचल को देखना, आंखें खोलकर उठते बैठते, अभी हम बैठे हैं यही साक्षी भाव को पुष्ट करेगा, अभी आप बैठे हैं, बैठे बैठे ही अनुभव करो कि हम साक्षी होकर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो साक्षी होकर बोल रहे हैं, खा रहे हैं तो संपूर्ण जागृत होकर खा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसी संपूर्ण जागरण की अवस्था में पाप असंभव है। जहां संपूर्ण जागरण होता है वहां आत्मा की झलक मिलने लगती है, एक एक क्रिया शरीर की जो हो रही है उसका ध्यान, हाथ ऐसे रखा और फिर नीचे किया, वो भी जानकारी सहित, प्रत्येक क्रिया होश में, प्रत्येक क्रिया। अगर कोई 5-6 मास ये अभ्यास करे तो उसे एक अद्भुत सी अनुभूति होगी, एब्सोल्यूट वेटलेसनेस की अनुभूति, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और उसे हम उठाए, उसका वजन भारी है, और वो जागा हुआ है और तब हम उसे उठाए तब वो हल्का है, जागरण वेटलेसनेस लाता है। क्योंकि जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो तमो प्रधानता उसके साथ होती है, तमस सो रहा होता है और तमस का वजन ज्यादा है। एक बच्चा जो सो रहा है, सोए हुए बच्चे को उठाओ वजन थोड़ा ज्यादा लगता है, परंतु वो जागृत है, करके देख, बच्चा बैठा है, उसका वजन कम है। जब हम जागृति में रहते हैं वेट अपने आप कम होता है, पूरे शरीर में कुछ मास में ही हल्कापन अनुभव होगा, 24 घंटे चलेगा वो हल्कापन। हम कह ही नहीं रहे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं ये परिणाम है। कोई स्त्री हूं पुरुष हूं इसकी प्रैक्टिस करता है क्या कि अरे रे, मैं तो स्त्री नहीं मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष नहीं मैं स्त्री हूं, इसकी कोई प्रैक्टिस करता है? क्यों? नेचर नेचुरल। अगर मैं वास्तव में आत्मा हूं तो ये दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद भी देहभान ही तो धक्का देता है अंदर से, वासनाएं प्रकट होती है, उत्तेजनाएं आती है, हलचल होती है, हॉर्मोन्स। तो सबसे पहला अभ्यास है शरीर के प्रति जागरण। प्रत्येक क्रिया जो शरीर कर रहा है, एक इसमें भी दो बातें, एक तो चलते फिरते उठते बैठते जागरण, और दूसरा बैठ जाना है कभी कभी, रोज 10 मिनट 15 मिनट अधिष्ठान की मुद्रा में, और शरीर की सारी संवेदनाओं को देखना, यहां से लेके नीचे तक कहां क्या हो रहा है, खुजली दर्द, एक इंच इंच को निरीक्षण करना है, टुकड़ा टुकड़ा, एक भी अंग ना बचे शरीर का, यहां से चालू करना नीचे तक, चेहरा गर्दन राइट साइड लेफ्ट साइड छाती पेट पीठ कमर पैर, एक राउंड कम से कम 10 मिनट, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, अधिष्ठान की मुद्रा में, अर्थात बिना हिले डुले, केवल देखना है, कहीं खुजली हो रही है खुजली को देखो, करना कुछ नहीं, केवल जानकारी, बिना कुछ किए बैठना सबसे कठिन काम है। हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, हम देखते हैं हॉस्पिटल में कोई अनन्य सेवाधारी एडमिट होते हैं कभी फ्रैक्चर, और डॉक्टर ने कहा 3 मास अब बिस्तर पर, असंभव हो जाने लगता है, अभी 3 ही दिन हुए, इतनी बेचैनी, मैं चल नहीं सकूंगा, मेरी सेवा होगा क्या होगा, कैसे होगा क्या होगा, कुछ करना है, बिना कुछ किए रहने की हमें आदत चली गई है। कुछ चाहिए, मोबाइल चाहिए, स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, एक एक नोटिफिकेशन एक एक तीर है माया का, तो दो अभ्यास, एक अपने शरीर के मूवमेंट्स के प्रति जागृति, दर्द हो रहा है बैठे बैठे उस दर्द को देखो, कोई कहते हैं बहुत दर्द है बहुत दर्द है, कहाँ दर्द है वो नहीं पता, आंखें बंद करके उस दर्द को पॉइंट आउट करो, वो कहाँ है, वो कहीं एक जगह है, और जैसे ही हमारा मन एकाग्र होगा हम देख रहे हैं बस उसको, वो विलीन हो जाएगा। तो पहला अभ्यास चलते फिरते और दूसरा अभ्यास किसी और समय, 1 घंटे तक ले जाना है उस अभ्यास को, केवल बैठना और देखना। तो सबसे पहला जागरण है शरीर के तल पर, जब हम शरीर से परे निकल जाते हैं बाय बॉडी रिमेंबरिंग, बॉडी ऑब्जर्वेशन से, तब उस आत्मा की झलक अपने आप मिलती है, बिना ये कहे कि मैं आत्मा हूं या समान। दूसरा चित्त, अपने चित्त में चल रहे विचारों को देखना, मन में उठ रही तरंगों को देखना, उन्हें सप्रेस नहीं करना, उन्हें दबाना नहीं, अच्छा नहीं है ये बुरा नहीं है। जैसे हम रास्ते पर चलते दो पेड़ है, क्या हम कंपेयर करते ये अच्छा ये बुरा वो बुरा ये अच्छा, नो कंपेरिजन, ये पाप ये पुण्य केवल देखना, जैसे कोई पक्षी है ऊपर से देख रहा है धरती पर, जैसे आकाश है मैं आकाश हूं, ये बादल आ रहे हैं जा रहे हैं विचारों के बादल, मैं सागर हूं, ये तरंगे है विचारों की आ रही है जा रही है। वासना उठी अचानक, काम वासना, अत्यंत तीव्र वासना, उस वासना को देखो, उसका दमन नहीं, उसका एनालिसिस नहीं, ना उसको दमन करो ना उसको भोगो, उसको भोगो तो पश्चाताप, दमन करो तो बेचैनी, ना करो तो बेचैनी, और भोग लो तो पश्चाताप, दुख, भारीपन, पीड़ा। केवल देखना, वो आई है वो चली जाएगी, उसका स्वभाव ही है आना है और जाना। संवेदना है वो सेंसेशन है, और सेंसेशन का एक ही स्वभाव है अनित्य, स्थिर नहीं है। थोड़ी देर अगर रुक गए, ये जो गैप है इंपल्स और एक्शन के बीच का, आवेग, अर्ज, टेम्पटेशन, इच्छा और कर्म, इस गैप को अगर थोड़ा क्रिएट कर दो और थोड़ी देर बढ़ा दो, तो वो वासना, वो अर्ज, वो इंपल्स विलीन हो जाएगी, और यही साधना है। तो दो तलों पर काम करना है, बैठो और केवल विचारों को देखो, बादल है आ रहे जा रहे, मैं पेड़ हूं विचार पक्षी है आ रहे जा रहे, मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं गाड़ियां आ रही है गाड़ियां जा रही है, ये विचार आ रहे हैं विचार जा रहे। जो अपने ही विचारों को देखने में सक्षम हो जाएगा वो मन से परे निकल जाएगा, और जो शरीर से परे निकलता है और मन से परे निकलता है उसे अपने आप आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये दो अभ्यास करने हैं। तो सबसे पहला है आत्मा, आत्मा तक पहुंचने का रहस्य जानना है। क्यों ऐसे धर्म हुए संसार में कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं माना, जैनिज्म केवल आत्मा को माना, बौद्धिज्म ना आत्मा ना परमात्मा, फिर भी योगियों की स्थिति इतनी ऊंची थी, शरीर से ऊपर थे, विकारों से परे थे वो लोग, कैसे जीना जीता उन्होंने विकारों को, कुछ तो होगा। सबसे पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा। सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है? परमात्मा, कल की साकार मुरली, सेकंड लास्ट लाइन, जब तुम बाप को जान जाते हो तो सब कुछ जान जाते हो। अगर उस तक पहुंचना है और उसको जानना है तो विधि क्या है? यदि इस देश के प्रधानमंत्री को जानना है तो विधि क्या है? हम उनके विषय में पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, परंतु उसमें बायस्ड हो सकता है। जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है चैनल से वो कितनी सत्य है पता नहीं। बेस्ट विधि क्या है किसी व्यक्ति को जानने की? उसके साथ रहना 24 घंटे, तो हम उसको जान सकेंगे। उसी तरह परमात्मा को यदि जानना है तो सूचनाएं तो बहुत है, उसका स्वरूप ये है, यहां रहता है वहां रहता है, ये करता है वो करता है, पर क्या हमने उसे जाना है? अगर जाना होता तो उसने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम मुझको जान जाओगे तुम सब कुछ जान जाओगे? कितनी बड़ा स्टेटमेंट है ये, अर्थात हमने नहीं जाना है। वो क्या है, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, और उसे जानने की विधि है उसके साथ रहना, और उसे जानने की विधि है जैसा वो है वैसा ही बनकर उसे जानना। अगर कोई ये कह दे कि मुझे पहले से ही पता है, अब ऐसे व्यक्ति को कैसे सिखाएंगे? इसलिए निरंतर क्या हो? उत्कंठा। निरंतर क्या हो? एक क्यूरियोसिटी। निरंतर क्या हो? एक लर्निंग एटीट्यूड, रादर लर्निंग। एक वाक्य बहुत बहुत स्ट्रांग है और बहुत फेमस है इंग्लिश में, व्हाट वी हैव लर्नड अनकॉन्शियसली नाउ वी शुड लर्न अनलर्न कॉन्शियसली। जो हमने बेहोशी में सीखा है अब उसे होश में अनसीखा करना है। ये काम विकार, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, ये हमने बेहोशी में सीखा है सब, अब उसे होश में अनलर्न करना है, अनस्कूलिंग। तो जैसा एक छोटा सा बच्चा होता है उसके पास में प्रश्न होते हैं, ऐसे संदेह, ऐसे प्रश्न मन में भर जाए, जो व्यक्ति पहले ही सब कुछ स्वीकार कर लेता है उसका वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए हमने देखा है कई लोग जो बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं फिर बाद में संशय उत्पन्न होता है, उनकी जर्नी फेथ से चालू हुई है, निश्चय से, और बाद में संशय बन जाता है। लेट द जर्नी बिगिन विद डाउट। जर्नी कहां से चालू हो? संशय से, संदेह से। संदेह अलग है, संशय अलग है। संशय निगेटिव है, संदेह पॉजिटिव है। जानना है, उत्सुकता है, व्हाट इज इट, क्यूरियोसिटी है, कुतूहल है। और ऐसा कुतूहल, ऐसा उत्साह, ऐसी क्यूरियोसिटी निरंतर हमारे भीतर हो कि ये है क्या। आश्चर्य से देखो हर चीज को, यहां जो जो घटित हो रहा है उस सब बातों को। जैसे छोटा सा बच्चा आश्चर्य से भरता है, उसके मन में प्रश्न है। एक छोटा सा बच्चा महान साहित्यकार एच.जी. वेल्स से पूछता है कि अंकल ये पत्ते हरे क्यों है। वो इतना बड़ा लेखक है, बुद्धिजीवी है, वो सोचता है पत्ते हरे क्यों है। वो बच्चे से कहता है मुझे नहीं पता, जब पता चलेगा तो बताऊंगा। वो ये भी कह सकता था वो क्लोरोफिल है इसमें इसलिए हरे है, पर फिर क्लोरोफिल हरा क्यों है, प्रश्न वही आता है। ये सृष्टि रहस्य से भरी है, ये स्वीकार करना कि हमने अभी कुछ भी नहीं जाना है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। हमने जो इकट्ठा किया है, आत्मा, परमात्मा, संगम युग, मौत सामने खड़ा है, दिव्य गुण धारण करो, सारी सूचनाएं हैं। ज्ञान कहाँ है, विजडम कहाँ है, प्रज्ञा कहाँ है, और हो, और इस युग में उसको कितना जोड़ा है। अभी वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है हमारे जीवन में, यज्ञ में, भारत में और विश्व में, ये चार तलों पर हमें ज्ञान को अप्लाई करना है। हमारे जीवन में क्या घट रहा है, हमारे जीवन में ही इतनी हलचल है तो हम यज्ञ में क्या सोच सकेंगे। इधर सोचेंगे तो इसका सोच सकेंगे, इसका सोच सकेंगे तो इससे बाहर निकलकर भारत में क्या चल रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, उसके विषय में सोच सकेंगे, और उसको सोचेंगे तो उससे ऊपर और सोच सकेंगे विश्व। यदि हम मुरली को पढ़े भी तो ऐसे पढ़े कि इसका क्या अर्थ है इन चारों लेवल पर, सेल्फ, यज्ञ, इंडिया, वर्ल्ड, तो वो पढ़ना सार्थक होगा। जाके बैठ गए और लिखे, बेहोशी में जा रहे हो, बेहोशी में लिख रहे हो और बेहोशी में आ रहे, सारा काम बेहोशी में चल रहा है। ना कोई आश्चर्य है, ना कोई प्रश्न, ना कोई डाउट, चेतना जैसे मर चुकी है, चलती फिरती लाशें। और स्पार्क, वेयर इज द एनिमेशन। छोटा बच्चा, कितने प्रश्न होते हैं, वो रेत में वो सीप को बिनता है और वहां लोग वॉकिंग कर रहे होते, जॉगिंग, उनको कोई मतलब नहीं है वो रेती पर क्या पड़ा है, और उसके मन में आश्चर्य है, व्हाट इज दिस, क्या है ये सूर्य कहां से आता है और कहां जाता है, उसके मन में आश्चर्य है, ओहो क्या है ये। उसी तरह ये कौन है, ये किसने खेल रचा है, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, वो कौन है, उसी से पूछो कि तुम बताओ तुम कौन हो, तब तक मुझे नहीं समझ आएगा। तो परमात्मा एक रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे मिस्टीरियस फिगर है पूरे 5000 वर्ष का, और हर धर्म ने उसके विषय में कुछ ना कुछ कहा है, कुछ ना कुछ बोला है। उसका धैर्य, उसके स्वभाव को जानना, उसे कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती है, वो भी समझ लेना। अव्यक्त बाप दादा बैठे थे कभी ओम शांति भवन में, आए थे, दादी जानकी थी, बाबा को कुछ जूस पिलाया, तो बाबा ने कुछ चेहरा ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसे किया होगा, दादी ने पूछा बाबा आपको पसंद नहीं आया क्या? द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड, उसके समीप रहना होगा, उसके साथ निरंतर बातें करते रहना पड़ेगा, उससे मन की तार निरंतर जुड़ी रहे इस संसार में रहते हुए। पहले तो ये स्वीकार करो हमने तुमको जाना ही नहीं, हमको तुम कौन है तुम बताओ, तो वो बताएगा। अर्जुन ने पहले प्रकट किया कि मुझे कुछ नहीं आता, तब फिर भगवान परिचय देते हैं, मूढ़ा हम ना ही जानती, जो मूर्ख है वो मेरा उपहास उड़ाते हैं, गीत में है, अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूर्ख है वो मेरा उपहास उड़ाते हैं, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं। दूसरा रहस्य कौन सा है? परमात्मा। तीसरा है क्लासेस। क्लासेस की क्या आई है? बाढ़, 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 फ्लड, चारों तरफ इंटरनेट, यूट्यूब, सब जगह छाए हुए ज्ञान ही ज्ञान। उसका करना क्या है? किसको सुने और किसको ना सुने, कंफ्यूजन। उसके पीछे रहस्य क्या है? हर व्यक्ति आता है, अपनी बात बताता है और जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो बताता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। Do not accept anything because it is written somewhere. इसलिए स्वीकार ना करो कि कहीं लिखा है, इसलिए स्वीकार ना कहो कि किसी ने कहा है, इसलिए स्वीकार ना कहो करो कि किसी महान पुरुष ने कहा है, इसलिए भी स्वीकार ना करो कि परंपरा से कोई बात चली आ रही है, इसलिए भी स्वीकार ना कहो कि भगवान ने कहा है। स्वयं स्वयं का सत्य को ढूंढना होगा, हमें अपना सत्य स्वयं ढूंढना है, और यह अपनी खोज है, आंतरिक खोज है, मेरी अपनी खोज। वो जो कहा वो उस समय के लिए रिलेवेंट होगा, अभी 2026 में क्या रिलेवेंट है, वो तो मेरी खोज है। मुरलिया चली है, वो उस समय चली थी, अगर हम उसको अपडेट नहीं कर रहे तो वो एक, इसलिए उसमें बोर होगा, केवल वो शब्द भी बोर होंगे, और वही शब्द अगर बार बार रिपीट किए जाते हैं उनका अर्थ कम हो जाता है, खो जाता है। फिर उसी अर्थ को लेकर व्यक्ति जो चाहिए वो कर सकता है। श्रीमत शब्द के हर व्यक्ति की डिक्शनरी में अलग अलग अर्थ है, ड्रामा शब्द हर एक की डिक्शनरी में अलग अलग अर्थ है, पाप कर लो, जो करना है कर लो, ड्रामा। नया आया परिवार ज्ञान में आया है, शादी में जाते हैं, प्लेट में समोसा, समोसा का खोलता है, आलू खाता है, क्यों? हम बाहर का नहीं खाते। हर एक व्यक्ति अपनी परिभाषा गढ़ सकता है, श्रीमत क्या है और सत्वगुण सात्विक भोजन क्या है। यहां हमें प्रयोग करना है अपने विवेक का, सत 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 विवेक बुद्धि का, विजडम का। जो दूसरे के विचार है वो हमने स्वीकार कर लिए, वो उधार का ज्ञान है और उधार का चिंतन है, और हम उधारी पर ही चल रहे हैं कब से। हमारे अपना विचार कहा है, हमारे अपना चिंतन कहा है, हमारे अपने मत कहा है उस विषय में, कोई भी विषय हो, चाहे भारत की राजनीतिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो या अपने जीवन की कोई एक विकार की समस्या हो या कोई व्यसन, विचार किस चीज की आवश्यकता है? विचार की, चिंतन की। ये तीन दिन नियति ने आप सबको दिए हैं विचार करने के लिए, बैठ के केवल सुनने के लिए नहीं और ना ही स्वीकार करना है। और हम भी जो अभी तक कहा सब रिजेक्ट कर दो, ये किसी और का विचार है। रिजेक्ट एवरीथिंग, डिलीट। वो तो हमने सोचा होगा, हमारा मन मत परमत होगा। वो मुझे, मेरे लिए सत्य हो सकता है, वो ब्रह्मा के लिए सत्य हो सकता है, मेरे लिए थोड़ी ना। मुझे अपना सत्य खुद ढूंढना है। मेरा अपना एक स्वतंत्र जीवन है, उसमें कहां इसको और कैसे अप्लाई करूं। इसलिए तीसरा सत्य, रहस्य जो ढूंढना है, जो इतनी सारी क्लासेस है, इतना सारा जो ज्ञान बह रहा है, हरेक के अपने अपने विचार, हरेक के विचार, उसमें से मुझे क्या लेना है? नहीं तो इट विल कॉज कन्फ्यूजन। कोई कहेगा विजुलाइज करो, कोई कहेगा विजुलाइज नहीं करो, कोई कहेगा आंखें खोलो, कोई कहेगा आंखें बंद करो, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो। हरेक के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। एक ही मुरली अगर दी जाए और 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, 100 प्रकार से मुरलियां सुना सकते हैं। यहां तक कि टेररिस्ट भी अपना पॉइंट उसमें से ले लेगा, वो भी कहेगा कि इसमें लिखा है आई एम फॉलोइंग श्रीमत। इसलिए तीसरा, जो भी सुन रहे हैं अभी नहीं, यहां से जाने के बाद भी, उसमें क्या प्रयोग करना है? विवेक। मुरलियों में आता है जज करो, मैं जो कह रहा हूं वो राइट है या शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। बाबा खुद कहते हैं अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है ये, किसी ने कह दिया इसलिए स्वीकार नहीं करना है। खुद तोलो उसको, जज करो, करना है नहीं करना है। इसलिए जो हमें एक विचार करने की बुद्धि अपने अंदर विकसित करनी है, परंतु बचपन से और समाज ने और हमारे शिक्षकों ने और हमारे गुरुजनों ने हमको यही सिखाया है, सब स्वीकार करो। लर्निंग के 7 लेवल है, उसमें से सबसे पहला लेवल है उसको कहते हैं 0 लर्निंग। लर्निंग के 7 लेवल से लर्निंग के सबसे निचला फर्स्ट लेवल जो है उसको कहा जाता है 0 लर्निंग, अर्थात बैठना, सुनना, स्वीकार कर लेना, अर्थात तोता रटन याद कर लेना, जो सारे बच्चे करते हैं स्कूल में। पढ़ाई चलती है, एग्जाम्स होती है, उसमें क्या है? कुछ खुद की बुद्धि का प्रयोग करते हैं क्या? रटा रटाया बस, जाओ बैठो, मुरली सुनो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने ऐसा कहा, इसको कहते हैं 0 लर्निंग, लेवल 1। बाकी जो लेवल्स है उसकी चर्चा कभी बाद में, ये टॉपिक रह जाएगा, खुद स्टडी करो। जहां वक्ता क्लास को छोड़ता है वहां से आपको अपना चिंतन आगे बढ़ाना है। उसने जो बताया थोड़ा सा बताया, जहां उसने छोड़ा वहां से चालू करना है। इसलिए मनन, चिंतन, कल के अव्यक्त इशारे में भी था, स्थिति बनाने का आधार है ज्ञान का मनन। एकांत है चारों तरफ, प्रकृति है, बैठो किसी, यहां से जाने के बाद हमने जो अब तक कहा, स्वीकार कुछ भी नहीं करना, तोलो उसको, सोचो क्या है, क्या है। जर्नी डाउट से चालू करनी है तो जाके फेथ, और जो व्यक्ति डाउट से चालू करता है फिर उसको कोई हिला नहीं सकेगा। पहले अगर स्वीकार कर लिया A=B तो खेल खत्म। एक्सेप्ट, रिजेक्ट कर दो A is not equal to B, हाइपोथेसिस ये है A is not equal to B, और फिर करते जाओ, ढूंढते जाओ, और फिर पता चल गया नो A is equal to B। जो व्यक्ति इस तरह से कंक्लूजन पर पहुंचा है वो बहुत शक्तिशाली रहेगा। और जिसने केवल स्वीकार कर लिया काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, वो दबे रहते हैं और 30-40 साल गुजर जाते हैं और काम की वो वासना कभी ऊर्जा और ओजस में रूपांतरी नहीं हो पाती है। इसलिए ब्रह्मचारी अविवाहित तो है परंतु ब्रह्मचारी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य तो ऊर्जा है, काम एक भयंकर ऊर्जा है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको मारा नहीं जा सकता है, उसकी दिशा चेंज की जा सकती है, वो शक्ति है। और जब उसकी दिशा बदल जाती है तब उसके लिए काम विकार नहीं रहता, मूर्खता या लोअर प्लेजर्स, हायर टेस्ट जिसको मिल गई, हायर टेस्ट, उसके लिए वो संघर्ष नहीं रहता है। फिर जीवन पर्यंत व्यक्ति संघर्ष करते रहता है, फिर भी विजयी नहीं हो पाता, रोज पढ़ता है, समान लिखता है, सब करता है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, गीता में वाक्य है। जब उस योगी को परम की टेस्ट मिल जाती है, हायर, यस, वो आत्म साक्षात्कार स्वयं उसको हो जाता है। तो जो भी आप सुन रहे हैं उसे आंख बुद्धि खोल के, आंखें खोल कर सुनना है, और जो उसका एनालाइज करना है, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनालिटिकल माइंड, जो एनालिसिस करे चीजों का, अंधश्रद्धा से स्वीकार नहीं करना। नहीं तो आज इधर है, कोई दूसरा आएगा, सेंटरों पर हम देखते हैं माता है, सेंटर जाती है और जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में भी जाती है, पता नहीं वहां से भी कुछ मिल जाए। वो देवी की पूजा भी होती है और गणेश जी की भी पूजा होती है, ये भी और वो भी, पता नहीं इधर बाबा से नहीं मिला तो गणेश जी की कृपा से ही कोई इंटरव्यू में बेटे का नंबर लग जाए, इधर भी और उधर भी, ये बाबा के पास और वो बाबा के पास भी जाते हैं, ना इधर है ना उधर, दुविधा में दो गए, ना राम ना माया, त्रिशंकु की तरह लटके हैं उल्टे, ना इधर ज्ञान में पूरा चल रहे हैं ना उधर संसार में है, केवल शरीर इधर है बस। चौथा, डिजिटल वर्ल्ड, ये मोबाइल दुश्मन नहीं है पर उसका गुलाम बन जाना दुश्मन है। एंडलेस स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, शॉर्ट्स रील शॉर्ट्स रील शॉर्ट्स रील शॉर्ट्स रील्स, कॉमेडी फिर म्यूजिक फिर कॉमेडी फिर म्यूजिक फिर क्लास फिर मुरली फिर मूवी फिर ट्रेलर फिर गेम, इधर से उधर इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर, व्यक्ति थक जाता है। जागरण की अवस्था में यूट्यूब और ये सारी जो चीजें, अंदर घुसना आसान है, चक्रव्यूह है, पर निकलना मुश्किल, इसलिए चेक करना है कि ये डिजिटल वर्ल्ड ने मुझे गुलाम तो नहीं बना दिया, और अपने साथ प्रयोग करके देखना है। एक दिन नो यूट्यूब NYT, सफल हो गया तो 3 दिन NYT नो यूट्यूब, नो रैंडम ब्राउजिंग, लोगों को व्यसन है, व्यसन न्यूज का व्यसन है, इसने ये कहा उसने वो कहा, यहां ये हो रहा है वहां, अब आगे क्या होगा, दिन भर न्यूज देखते रहते हैं, ऑनलाइन न्यूज। दूसरा, ऑनलाइन परचेस, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, व्यसन है वो डिजिटल, कुछ ना कुछ देखते ही रहते, कुछ ना कुछ करना है। और फिर हम कहते हैं कि हम ज्ञान योग से करते हैं, ज्ञान योग से तो शुरुआत होती है, एंड नहीं, एंड कुछ और से ही होता है। और मन साइंटिफिक, इट्स अ डोपामिन लोडिंग, डंपिंग होता है डोपामिन का, हार्मोन रिलीज होता है एकदम खुशी वाला, और फिर जब मुरली पढ़नी है तो वो सब बोर लगता है, इसकी आदत पड़ने के बाद। डोपामिन एक शरीर में केमिकल है, वो रिलीज होता है, सब जगह वही रिलीज होता है, काम विकार में भी वही रिलीज होता है, सब जगह, योग में भी वही रिलीज होता है, परंतु बड़ी मेहनत है या शरीर अवस्था पाने को, वो सब बहुत आसान है। इसलिए आत्मा बंधन में आ जाती है, ट्रैप में आ जाती है, कैद हो जाती है, गुलामी। तो अपने डिजिटल रिलेशनशिप को चेक करना है कि आज यह है, कल नहीं भी रहा तो हम स्थिर रहे, और इसका प्रयोग यही इसी भट्टी में कर सकते हैं। स्विच ऑफ कर दो उसको, 3 दिनों के लिए देखो क्या होता है, डू द एक्सपेरिमेंट, मन शांत हो जाएगा। लोग थकते क्यों है, सुबह से लेके कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, अपना जॉब करते हैं, फिर थकान होती है, म्यूजिक सुनते हैं, गीत सुनते हैं, ये करते हैं, फिर क्लास सुनते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर और कुछ सुनते हैं, फिर जोक सुनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स से भरा है संसार। पर क्या ये विश्व का कल्याण कर सकते हैं? ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सारे न्यूज एंकर्स, सारे एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, इसने ये कहा उसकी ये रिएक्शन, उसने ये कहा उसकी ये रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स इस पर प्रयोग करने, NYT, नो यूट्यूब, NRB, नो रैंडम ब्राउजिंग, रैंडम सर्फिंग, इधर देखा, ये देखा, वो देखा, कितना मन अस्थिर है। अगला भोजन, ईटिंग, अगला रहस्य जो है, हम क्या ले रहे हैं उसका प्रयोग करके देखना है। जो हमने खाया उसका नींद पर क्या प्रयोग है, असर है, योग पर क्या असर है, हमारे शरीर पर, विकारों पर क्या प्रभाव है उसका, अलग अलग अपने ही प्रयोग करके देखने हैं। क्योंकि जहां शरीर ही ठीक नहीं है वहां अध्यात्म फेल है। इतनी बीमारियां क्यों आ रही है, ढूंढना है कारण, क्यों बार 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 बीमार पड़ते हैं हम। एक ही दिन में कितने पेशेंट्स आते रहते हैं, जवान जवान लोग आते, थकान है, कमजोरी है, ये है, वो है, इधर दर्द, उधर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, और जब रिपोर्ट करते सारे रिपोर्ट नॉर्मल, और जब उनको कहते रिपोर्ट नॉर्मल, उदासी से भर जाते हैं, हम इतने बीमार और रिपोर्ट नॉर्मल। लोगों के रिपोर्ट कितने खराब आते हैं, वो खुश रहते, हमारे रिपोर्ट नॉर्मल पर हम इतने बीमार। कुछ तो आना चाहिए था, वो थायराइड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, नहीं 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 नॉर्मल है, वो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम दिख रहा है, 16, पहले 17 था, शायद उसकी वजह से कमजोरी है। कमजोरी उसकी वजह से नहीं है, कमजोरी मन की वजह से है, कमजोरी इमोशंस की वजह से है, कमजोरी साइकोलॉजिकल है, कमजोरी अतीत के बोझ की वजह से है। मन में किसी चीज को पकड़ के रखा है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा है, उसकी वजह से। तो भोजन अलग अलग प्रयोग करके देखो, फलाहार, रसाहार, अपक्व, पक्व, सारे करके देखो, और फिर देखो अमृत वेले का क्या होता है, फिर देखो नींद का क्या होता है, फिर देखो शरीर में क्या होता है, लाइटनेस का फील होता है, अत्यंत लाइटलेस, टोटल 2400 घंटे एक वेटलेसनेस का अनुभव, हल्केपन का अनुभव कब होता है, 3-4 बार खाके, या कम खाके, या ज्यादा खाके, इतना सब जो डाल रहे हैं, मसाले, तेल, नमक, उत्तेजनाएं, मन अस्थिर और बीमारियां, वो अलग क्यों? स्टार्ट वर्किंग, विचार, चिंतन, मनन करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं। बिना डाइट के एक्सपेरिमेंट के स्पिरिचुअलिटी अपूर्ण है, हरेक को करना होगा, हरेक को देखना होगा कि मेरे शरीर को क्या सूट होता है। जैसे ही भोजन बदलेगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त, बिच सब बदल जाएंगे, क्योंकि भोजन बदलते ही इमोशंस बदल जाते हैं, विचार ही बदल जाते हैं, एक अलग ही अवस्था आ जाती है। जो बंधन टूट नहीं रहते अपने आप टक 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 सब टूट जाते हैं। जो लड़ रहे थे ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, वो स्वयं आ जाता है। ऐसे दूसरों के अनुभव सुनने हैं। अगला है फैशन। अभी अभी मुरली चली थी कुछ दिनों पहले साकार, देखना है मुझे कहाँ आ सकती है। क्या कहा था मुरली में उस दिन, काले रहे तो और ही अच्छा है, नहीं तो पंजा मारते हैं। उसके कई सारे रूप, ढेर सारे रूप। सुबह सुबह अमृत वेला बाबा की कुटिया पांडव भवन में हम लोग बैठते, अचानक कोई आ जाता है, इतना सेंट इतना सुगंध, कई लोग परम धाम से धड़ाधड़ नीचे गिरते हैं, पूरा नाकों में घुस जाता है। सुबह 3 बजे श्रृंगार, श्रृंगार कौन करता है, शायद कुरूप है, अच्छा दिखने के लिए ना। विनोबा भावे जा रहे थे ट्रेन में, एक महिला थी उसने गजरा पहना था, गजरा पता है ना, गजरा फूलों वाला, वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें ये दिखता है, तो किस लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। हमारा वस्त्र कपड़े ऐसे हो कि जो दूसरों को आकर्षित ना करे या फिर उनको दुखी ना करे, हमारे पास ऐसी वाली बैग कब आएगी, वो पर्स कब आएगी, वो शॉल हमारे पास कब होगी। फैशन हमारा श्रृंगार पवित्रता है, हमारा श्रृंगार सादगी है। उसको भूलना नहीं, सिंप्लिसिटी, ये करो वो करो, बाल काले करो, पाउडर टैटू, ये क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, चप्पल हैंडल पर्स बैग घड़ी, अलग अलग प्रकार की अंगूठियाँ, इधर एक इधर एक इधर एक, और एक नया चालू हुआ है काले धागे, वो सब भी पहनते हैं, बीकेस दिखते हैं हमको, एडमिट होते हैं ना हॉस्पिटल में आते हैं तो, मेरी मम्मी ने कहा है उसकी भावना है ना, इसलिए बाकी हमको कुछ नहीं। एक इधर काला एक इधर सफेद एक पैर में, बहुत कुछ करते हैं। ट्रैप, बाबा ने कहा शिव मंत्र के आगे बाकी सब मंत्र फेल है, भूत प्रेत तंत्र तंत्र जो है संसार में, ये सब अटैक उनको करते हैं जिनका उस पर विश्वास है या कमजोर है या शरीर में आ सकती है, जो निरंतर अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं और जिनकी हृदय में परमात्मा प्रेम है और जो समान में स्थित है, उनको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा रहस्य है, फैशन, उसको भी समझना है। अगला है ज्ञान मुरली। मुरली मुरली को वैसे ही स्वीकार नहीं करना है, उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है, उस पर चर्चा करनी है, आर पार चर्चा हो, एक एक पॉइंट पर चर्चा हो, कितने सारे पॉइंट्स उसमें है जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, हमने सुना है इतने सालों से पर चर्चा नहीं की है। चर्चा करेंगे तो कुछ नया निकलेगा। इसके लिए छोटा छोटा ग्रुप बनाओ, कुमारों का एक ग्रुप, छोटी माताओं का, टीचर्स का, हर संडे मिलो या रोज रात को मिलो, कभी तो मिलो, पर डिस्कशन होना चाहिए। लिखना रोज एक टॉपिक पर, मुरली के पॉइंट्स नहीं लिखो, केवल टॉपिक्स लिखो, ये टॉपिक्स है, और दिन भर सोचो उसके विषय में क्या है क्या है क्या है, टॉपिक्स लिखो, प्रश्न बनाओ, उत्तर ढूंढो। वैसे ही स्वीकार नहीं करना है उसको, और जैसे कहा चार तलों पर, मेरे अपने जीवन में जो समस्याएं हैं या जो कुछ चल रहा है उसमें कहाँ वो अप्लाई होती है, आसपास डिपार्टमेंट सेंटर घर ऑफिस उसमें कहाँ ये अप्लाई होती है, उससे बाहर निकलकर भारत, भारत में इस समय क्या चल रहा है। हर एक कहता है कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु देख सब रहे, मैच देख रहे, पॉलिटिक्स की सारी खबरें हैं, और अंदर से ये भी है हम इसके पक्ष में हैं और हम उसके पक्ष में हैं, आध्यात्मिकता में निरपक्षता है, हमारे लिए ये और वो ये नहीं हो सकता। भारत और चौथा पूरा विश्व, इस मुरली में ये जो मुरली है चाहे साकार 2026 में कैसे अप्लाई होती है, ये रेलेवेंस उसका ढूंढना है, तो उसका रहस्य समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो इस मुरली बहुत रहस्यमयी है, उसको अलग अलग तरीके से पढ़ना है, अलग अलग मेथड से पढ़ना है, अलग अलग विदेशी आते हैं केवल डायग्राम बनाते हैं, पिक्चर्स बनाने हैं उसके, चित्र बनाने, कार्टून बनाने, विजुअल्स, इमेजेस, फ्लो चार्ट्स, शेप चार्ट्स, चिंतन करना है, ये पॉइंट आया, ये क्या है, सुबह आया गंधर्वी विवाह, विवाह क्या होता है, गंधर्वी आठ प्रकार के विवाह है, उसमें एक वो विवाह है, रिसर्च सोच ढूंढना है, ये सब क्या है, यह ऐसा जो कहा है उसको ऐसे स्वीकार करना ही नहीं है, इट्स अ रिसर्च टॉपिक, और टाइम निकालना पड़ेगा, और नहीं भी निकले तो दिन भर करते रहो, जब काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, माइंड में बहुत समय है, पर हमने ऑक्यूपाई कर रखा है अननेसेसरी अनावश्यक बातों से, वो हटते ही वो सारा सर्फिंग, वो सारा ब्राउजिंग, नया रैंडम ऐप जब भी हम खोलते ब्रेन का एक सेल एक्टिव हो जाता है, और रात में अगर ये करो तो फिर नींद नहीं आती है, इसलिए नींद नहीं आती है, मोबाइल अंधेरे में मोबाइल देखते रहते, मूवीज देखते रहते, चैटिंग, आई लव यू, आई मिस यू, हाउ आर यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, चैटिंग चैटिंग चलती रहती है, बंधन बॉन्डेज व्यर्थ विकार कॉल्स, ये सब बंध जाते हैं अंदर से, और फिर उठो पश्चाताप के साथ, खुद का स्टडी करना है, मैं कहाँ हूं और क्या कर रहा हूं। लास्ट हैबिट्स एडिक्शंस, व्यसन कौन कौन से है, चैटिंग भी एक व्यसन ही है, ये डिजिटल में तो हजारों व्यसन से शॉपिंग से लेके बहुत सारे, अपने व्यसनों की लिस्ट बनानी है, मुझे किसका व्यसन हो गया, क्या अगर बिना एक ही जगह मुझे बैठने के लिए कहा गया है सुबह से लेके शाम तक, क्या मैं बैठ पाऊंगा बिना कुछ किए, नथिंग डूइंग, एक कमरे में बंद और बैठना, हलचल, जैसे ट्रेन में देखा होगा ना लोग बैठते बैठते के शांति शांति से नीचे की बैग निकालते, चैन खोलते उसमें, फिर वाटर बोतल निकाल, फिर इधर देखते, फिर ट्रेन से झुक झोंक झांक के देखते कौन जा रहा है कौन आ रहा है, फिर सामने वाले से पूछे और सुनाओ कहाँ जा रहे हैं आप, और कोई बीके अगर होगा तो पकड़ के उसको, आत्मा तुम आत्मा हूं से चालू करके ब्रह्मचर्य तक उसको ले जाते हैं, और ये है सेंटर का एड्रेस और ये मेरा एड्रेस, और मैं पूछूंगा तुम जाते कि नहीं जाते, बड़ी ही बेरहमी से उन पर बेरहमी से रहम करते, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, आज से बाहर का खाना बंद, बेचारा इतना सा मुंह हो जाता है उतरते समय ट्रेन से, भयंकर सेवा करते हैं। प्रजा तैयारी करती, प्रजा तैयार करती। एक भाई आया था शांतिवन का, उसका लौकिक भाई शांतिवन में कैंपस में घूम रहा था। जो भी आता था पकड़ के आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, 3 दिन बाहर ही घूमता रहा, अंदर ही नहीं आया वो डर के मारे। यहाँ जो भी मिलता है वो आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, छोड़ते नहीं है लोग, बहुत बड़ी बेरहमी से ज्ञान देते। तो एडिक्शंस, दूसरों का कल्याण करने का भी एक एडिक्शन ही है, खुद का तो किया नहीं है, बस सबको सुधारने का एडिक्शन, सबका ठीक करने का एडिक्शन। तो कितनी बातें हुई, 8। सबसे पहले खोज करनी है आत्मा क्या है, मैं कौन हूं का उत्तर आत्मा बिल्कुल नहीं है, वो खोज है, ढूंढो उसको। दूसरा परमात्मा। तीसरा, ये सारी जो बाढ़ आई है क्लासेस की, उसमें रहस्य क्या है, सार क्या है, और मेरे लिए कौन सा सत्य। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स। अगला, खाना भोजन मेरा क्या है। ऐसा भोजन ना हो जो उत्तेजना उत्पन्न करो करे, जो आलस उत्पन्न करे, और जो शक्ति ना दे। ये 3 क्राइटेरिया है। वो भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करता है, वो भोजन जो खाने के बाद नींद करने की इच्छा होती है, बहुत पानी पीने की इच्छा होती है, इतना नमक इतना तेल डाल दिया, जब तक ऐसे नहीं करते मजा नहीं आता। एक आत्मा आई थी हमारे ओपीडी में, उसके पास एक डिब्बी थी ठेचा, एकदम क्या कहते हैं उसको, मिर्ची इधर का इतना फीका फीका है, पूरा 7 दिनों का चटनी पूरी एकदम साथ में ही रखने का, इमरजेंसी में काम आने की। इतना फीका फीका पसंद ही नहीं आता है, टिकट तब ठीक लगता है थोड़ा, जितनी उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है उससे। और जहां इतना गरिष्ठ है और राजसिक है, वहां ब्रह्मचर्य कठिन है, बहुत कठिन। अगला, पैशन। अगला, ज्ञान मुरली। और लास्ट, हैबिट्स। तो सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल रख देंगे, और जो कहा शरीर की संवेदनाओं को देखना है, शरीर को इतना स्थिर कर दो कि अगले 10-15 मिनट वो बिल्कुल नहीं, पूर्ण स्थिर। पेन पेंसिल सब बाजू में, ये एक प्रयोग करना है, और ये प्रयोग यहाँ से जाके फिर बार बार करते रहना अपने कमरे में, दोपहर में या रात को सोते समय, रेड लाइट। स्थिर, सभी शरीर की हलचल समाप्त, शरीर को पूर्ण रूपेण स्थिर कर देना है। स्थिर शरीर में ही आत्मा का प्रतिबिंब दिख सकेगा। कुछ समय के लिए आंखें बंद और अपने शरीर पर होने वाली सभी हलचल संवेदनाएं को साक्षी होकर देखेंगे। आंखें, नाक, होठ, कान, गाल, पूर्ण चेहरा, मन को दौड़ाएंगे हर अंग पर, सिर के सिरे से। केवल देखना है, कहीं तनाव है, कहीं खुजली, कहीं गर्मी, गर्दन, एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे। राइट शोल्डर, दाया कंधा, पूरा हाथ, कपड़ों का स्पर्श, केवल देखते जाओ। बाया हाथ इंच इंच निरीक्षण करना है। छाती, राइट लेफ्ट, पेट, जो जो शरीर पर प्रकट हो रहा है, कहीं तनाव, कहीं दुखाव, कहीं खुजली, कहीं दर्द, कहीं कुछ, पीठ, कमर, शरीर पर हो रही हलचल तटस्थ भाव से देखना है। दाया पैर ऊपर से नीचे तक, जहां दर्द है वहां रुक जाना, उसके केंद्र तक पहुंचना और फिर आगे बढ़ना। जहां कोई भी संवेदना मिले वहां रुक जाना। प्रतिपल पूरे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है। एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक शरीर का निरीक्षण। शरीर को देखते देखते ही शरीर से परे निकल जाना है। आंखें, चेहरा, गर्दन, रिलैक्स, दोनों हाथ, छाती एक साथ रिलैक्स, दोनों हाथ, पेट एक साथ रिलैक्स, पीठ, कमर, दोनों पैर एक साथ। फिर से एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। धारा प्रवाह, शरीर को भेदते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, केवल देखना है। अब धीरे धीरे श्वास को देखो। श्वास आ रही है, जा रही है, केवल देखना। अपने मन को देखना है। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं विचार नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, मन का मालिक। भाव उमड़ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी विचार को दबाना नहीं, न भोगना। तटस्थ भाव, मैं देह नहीं, मैं विचार नहीं, मैं चिन्मय सच्चित आनंद स्वरूप चेतना हूं। आत्मिक स्वरूप का अनुभव, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, मैं दिव्य आत्मा हूं, चमकता हीरा अनुभव। मुझ आत्मा से पूरे शरीर में दिव्य किरणें फैल रही है, पूरे हॉल में फैल रही है, विश्व में फैल रही है।
सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझान स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्जर मन में है उलझन भरी हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी